प्रस्तुत है नाटक गुस्सा और प्यार। इसके लेखक और निर्देशक हैं माइकल होजेस। येलो,
किसकी शादी का कार्ड है ये?
कल तुम्हारे कोई दोस्त रंजीत वर्मा दे गए थे।
रंजीत वर्मा? हाँ, याद आया। वो तो कह रहा था कि शादी है, बहुत दिनों बाद मिला था।
तभी तो तुम सोचने लगे थे कि कौन रंजीत।
हाँ, ये सिटी के उस कोने में रहता है और हम इस कोने में, तो अब इनसे मिलना बहुत कम ही होता है। कभी कभार फोन पर बातचीत हो जाती है।
कब है इनके भाई की शादी?
परसों।
मगर परसों हमारे पुराने पड़ोसी काबरा साहब की बेटी की भी तो शादी है।
हाँ, परसों ही है क्या?
हाँ हाँ, परसों ही है।
परसों?
अब क्या हुआ?
परसों से मुझे याद आया कि परसों तो हमारी स्कूल में DUA का इंस्पेक्शन भी है।
तो क्या, इंस्पेक्शन तो दिन में ही होगा ना, इंस्पेक्शन शाम को तो होगा नहीं।
सही है कि इंस्पेक्शन तो सुबह ही होगा, लेकिन टाइम सुबह का दिया है DUO ने, 12 बजे भी आ सकते हैं, उन्हें कौन मना कर सकता है।
हाँ वो तो है।
फिर उनके आने के समय से पहले तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, फिर उनके इंस्पेक्शन की तैयारी अलग से करनी है।
लो, इंस्पेक्शन परसों है और इन्हें अभी से ही टेंशन होने लगा है।
अभी से टेंशन होने लगा है? अरे अगर मेरी तरह तुम भी किसी सरकारी प्राथमिक शाला की हेडमास्टर होती ना, तो तुम्हें भी मेरी ही तरह अभी से ही टेंशन हो जाता।
अरे तो तुम इतना टेंशन क्यों पाल रहे हो? तुम्हारे स्कूल की तरह और दूसरे स्कूलों का भी तो इंस्पेक्शन होगा ना, तो फिर वो तुम्हारी तरह यूं ही अभी से नर्वस होते नहीं होंगे।
तुम्हें क्या लगता है मैं नर्वस हूँ?
क्यों, नर्वस नहीं हो तुम? तो फिर क्या हो? इंस्पेक्शन परसों है, लेकिन इन जनाब को ऐसा लग रहा है जैसे इंस्पेक्शन परसों नहीं बल्कि आज और अभी ही है।
वही तो कह रहा हूँ, तुम सिर्फ घर में बैठे बैठे बातें बना सकती हो, क्योंकि जिम्मेदारी भरा कोई काम तुम्हारे सिर पर जो नहीं है।
क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा, जरा फिर से तो कहना। मुझ पर इस घर का कोई जिम्मेदारी भरा भरा काम नहीं है। ये घर क्या ये ऐसे ही चल रहा है? तुम्हें टाइम से खाना ऐसे ही मिल रहा है? तुम्हें अपने सारे कपड़े वगैरह ऐसे ही धुले धुलाए मिल रहे हैं? मैं तो अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही हूँ।
वाह वाह, 3 वक्त चूल्हा जलाकर कुछ बना लिया तुमने, मेरे कपड़े धो लिए तुमने, तो क्या समझती हो तुम? तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, एहसान कर दिया मुझ पर। खाना पकाती हो तो क्या तुम खुद नहीं खाती? क्या तुम अपने खुद के कपड़े नहीं धोती?
मगर मैं तुम्हारे लिए भी यही सब काम करने का कह रही हूँ।
तो क्या दुनिया में तुम एक अकेले ही ये काम कर रही हो? क्यों, कोई और औरत अपने घर में ये सब काम अपने और अपने पति के लिए नहीं करती?
और दोनों बच्चों का क्या कोई और बाहर से आकर कर जाती है?
क्यों, बच्चे क्या अकेले मेरे ही हैं, तुम्हारे नहीं है? और रही बाहर से आकर किसी के काम कर जाने की बात, तो कान खोलकर सुन लो तुम। जिस दिन बाहर से आकर कोई काम करेगी ना, उस दिन तुम घर के बाहर दिखोगी, समझी तुम?
हे भगवान, इस घर में इतना करो, सुबह 5 बजे से उठकर दिन भर कामों में मरते रहो और रात 9:30-10 बजे बिस्तर नसीब होता है, उसके बाद भी इस घर में मेरे ये हाल है।
तो फिर अपने घर वापस चली जाओ, जहाँ तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा।
मेरे जाते ही दूसरे दिन पता चल जाएगा।
तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन सी आफत आ जाएगी? तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि किसी के मरने से ये दुनिया नहीं रुकती?
हे भगवान, तुमने मेरे मरने का भी सही सोचा।
हाँ, क्योंकि मेरे सामने जो अपना ज्यादा ही महत्व बताता है, तो मैं उन्हें ऐसे ही महत्वहीन बना देता हूँ।
जरा तो भगवान से डरो, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
जब तुम मुझे अपना पति ना मानकर भगवान से नहीं डरती हो, तो फिर मैं क्यों डरूं?
मुझे तो तुम्हारी ऐसी बातों से किसी और औरत की बू आती है।
अगर 2 बच्चों के बाद भी तुम मुझे इस लायक समझती हो, तो मुझे अपने को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हारे मुकाबले मैं अभी भी किसी और के लायक तो हूँ। मैं तो अब तुम्हें किसी और के तो क्या, अपने खुद के लायक भी नहीं समझता हूँ।
वो तो मैं आजकल तुम्हारे बनने ठहरने से ही समझने लगी थी।
बेटी 8वीं में और बेटा 6वीं में पढ़ने के बाद भी किसी और के लिए बनने ठहरने का आरोप लगाकर तुम अपना खुद का अच्छा परिचय दे रही हो।
क्यों, तो क्या आप अपने स्कूल की नौकरी पर बन ठहरकर नहीं चाहते?
क्यों, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी स्कूल की नौकरी पर भिखारी बनकर जाऊं ताकि बच्चे मेरी हंसी उड़ाए?
बच्चों का तो बहाना है, सिर्फ बहाना, मैं सब समझती हूँ।
अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो इस घर में तुम झाड़ू नहीं लगा रही होती, झाड़ू कहीं किसी बड़ी कंपनी में बैठकर अपने मातहतों पर हुक्म चला रही होती, या कहीं IAS अफसर होती।
देखो देखो, मैं बता देती हूँ, तुम मेरे भाग्य को गाली मत दो।
वरना क्या कर लोगी तुम, हैं? क्या कर लोगी तुम? अरे मैं तो अपने भाग्य को गाली देता हूँ कि केवल अपनी चलाने वाली औरत मेरे ही पल्ले क्यों पड़ी।
अच्छा, और मैं अपने भाग्य का मातम बनाती हूँ कि मेरे पल्ले तुम्हारा जैसा गुस्सेला आदमी ही क्यों पड़ा। मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो मुझे तुम जैसा बात बात पर गुस्सा करने वाला ऐसा पति मिला, जिसे ढोना अब मेरी मजबूरी बन गया है।
मुझे ढोना तुम्हारे लिए मजबूरी हो सकता है, लेकिन तुम्हें ढोना मेरे लिए बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है। मैं जब चाहूँ तुम्हें तलाक दे सकता हूँ।
हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई।
अब भगवान को बीच में क्यों लाती हो? और किस्मत कोई मटका नहीं है जो फूट जाए। आदमी की कुछ किस्मत उसके खुद के हाथ में भी तो होती है।
तो फिर तुमने खुद अपनी किस्मत को अपने हाथ में क्यों नहीं दे दिया?
क्योंकि मैं तुम में और किस्मत में से किसी एक को ही अपने हाथ में कर सकता था, सो मैंने किस्मत की कोशिश किया। मगर अब देखता हूँ कि ना तुम और ना किस्मत दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है।
मैं तो तुम्हारे हाथ में होने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, बल्कि पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ।
तभी तो कहता हूँ कि आज की तुम जैसी नारी पढ़ी लिखी तो है, मगर पढ़ने लिखने में अपने सारे संस्कार ही भूल गई है। तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि तुम्हें अपने पति से कैसे बात करना चाहिए?
अच्छा, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी तो कह सकती हूँ।
जरूर कह सकती हो, जरूर, अगर मेरी कोई गलती हो तो।
यानी कि हरदम गलती मेरी ही रहती है, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं रहती।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं दुनिया की पहली औरत हेवा ने भी गलती की थी, और हेवा के साथ साथ उसके पति आदम को भी उसका फल भुगतना पड़ा था।
ले देकर तुम हर इल्जाम मुझ पर और औरतों पर ही लगाना, मैं
बस,
तुम्हें
बस बस बहुत हो गया। मैं अब और तुम्हारी ये बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ।
ओह, इस रोज की किचकिच से न जाने कब मेरा पीछा छूटेगा। सुनो।
क्या है?
अरे मैं तो आपसे सीधे बोल रही हूँ।
तो मैं ही कौन सा उल्टा बोल रहा हूँ, मैं भी तो सीधा ही बोल रहा हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो?
वो मैं ये कह रही थी कि
मैं समझ गया, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम अपनी माँ के घर जाना चाहती हो, तो जाओ। इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है, कब जाना चाहती हो?
ओहो, मुझे भी कुछ कहने दोगे या सब कुछ खुद ही कहोगे?
ओह, तो तुम भी कुछ कहना सुनना चाहती हो, तो ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो।
सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के बाद मीनल दीदी का फोन आया था। वे हर बार की तरह अपनी बेटी से उसके हॉस्टल मिलने इंदौर जा रही हैं, हमारे शहर से ही गुजरते हुए।
तो
क्या मीनल दीदी यहाँ भी दो दिन रुक कर जाएंगी और वापसी में सीधे अपने शहर निकल जाएंगी?
तो आने दो मीनल दीदी को, मैंने उन्हें आने से मना किया है क्या? इसमें मुझसे कहने की क्या जरूरत है?
कमाल है, तुमसे नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? फिर बाजार से सब्जी और कुछ किराने का सामान भी तो मंगवाना था। कल पहुंच रही हैं दीदी।
कल पहुंच रही हैं? वाह, तभी तैयारी आज से ही चालू हो गई क्यों? अच्छा ये बताओ स्तुति, मेरे घर से अगर कभी कोई आता है तो क्या तब भी तुम ऐसी तैयारी करती हो?
उफ़, तुम्हें तो बस झगड़ने का कोई बहाना चाहिए, सिर्फ बहाना। अरे तुम्हारे घर से हर दम या तो महीने के शुरू में ही या फिर महीने के बीच में आते हैं, और मीनल दीदी महीने के आखिरी में ही आ रही है, तो क्या कुछ सामान मंगवाओ नहीं? उनसे कह दूं कि ये सामान खत्म हो गया है, वो सामान खत्म हो गया है, अब पहली या दूसरी तारीख को मंगवाएंगे।
ठीक है ठीक है, ज्यादा बातें ना करो और लिस्ट दे दो मुझे, क्या क्या मंगवाना है तुम्हें।
ये लो।
वाह, सब कुछ पहले से ही तैयार है।
और सुनो, अगर पैसे ना हो तो सामान उधार ले आना, पहली दूसरी तारीख को चुका देंगे।
अब ये सब तुम मुझे मत सिखाओ, झोला लाओ।
लो। और हाँ, सब्जी जरा देख कर और ताजी ताजी लाना, कल जैसी बासी सब्जी मत उठा लाना।
अब सब्जी लाना मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा।
मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कल दीदी आएगी तो ऐसी सब्जी देखकर वे क्या सोचेंगी?
सोचेंगी ही, कुछ बोलेंगी तो नहीं। अब आज की ताजी सब्जी भी कल तक ताजी रह पाएगी क्या फ्रिज में भी?
अच्छा बाबा, तुम सब्जी लाओ तो सही। अच्छा हुआ गए, वरना फिर झगड़ने बैठ जाते।
सच मीनल दीदी, मैं ये इसलिए पूछ रही थी
क्योंकि मेरे ख्याल से आप कल शाम की ही आई हुई हैं, मगर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको आज ही दो दिन हो गए हैं यहाँ आकर।
सच स्तुति, लग तो ऐसा ही रहा है, और उसका कारण है तू और राहुल। भगवान तेरी जैसी छोटी बहन सबको दे स्तुति।
आप भी कैसी बातें करते हैं दीदी, ये भी तो आपका ही घर है।
तुझको और तेरे घर को अपना समझती हूँ, तभी तो स्तुति तुझे देखने और तुझसे मिलने चली आती हूँ।
सच है दीदी, आप हमें देखने चली आती हैं, मगर हम तो फिर भी नहीं आ पाते, टाइम ही नहीं मिलता है। अभी गर्मियों की छुट्टी में फिर इन्हें जनसंख्या का साक्षरता अभियान या वोटर लिस्ट तैयार करने जैसे काम में।
मैं जानती हूँ, तभी तो सोनल बेटी के पास जाते समय तेरे पास रुक कर जाती हूँ।
अच्छा दीदी, माँ के पास गई थी आप?
बहुत दिन से नहीं जा पाई, सोचती हूँ अगले महीने जाकर उनको देख ही आऊँ।
मैं तो फोन पर ही माँ और भैया के हालचाल पूछती रहती हूँ।
मेरा भी यही हाल है,
माँ बेचारे भी आजकल गठिया के दर्द से परेशान रहती हैं, चलने फिरने में बहुत परेशानी होने लगी है उन्हें।
मगर लगता है अब शायद उन्हें कुछ आराम पड़ जाए, क्योंकि अभी चार रोज पहले परेश फोन पर बता रहा था कि किसी नामी वैद्य से वहाँ माँ के लिए दवाई और मालिश का तेल लाया है।
सच दीदी, वाकई में परेश भैया माँ के लायक बेटे हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन अपने माँ बाप को पूछता है।
स्तुति, ओ स्तुति, जरा यहाँ आना।
जा, तुझे राहुल बुला रहा है।
अभी आती हूँ दीदी। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो तुम?
चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं तुमने?
अरे, अलमारी के ऊपर वाले खाने में तो रखे रहते हैं तुम्हारे मोजे।
अगर वहाँ मिल जाते तो तुम्हें क्यों बुलाता मैं?
क्योंकि आपकी तो आदत पड़ चुकी है चीखने चिल्लाने की।
जबान दराजी बंद करो और मेरा मोजा ढूंढो।
ये लो अपना मोजा।
अब कहाँ मिला ये?
यहीं, ये बीच वाले खाने में ही तो रखा था।
क्यों, तुम तो मेरे मोजे हमेशा ऊपर वाले खाने में ही रखती हो, अभी बीच वाले खाने में कब से और कैसे पहुंच गए?
अब मिल तो गए ना, अब क्यों जबरदस्ती दीदी को सुनाने पर तुले हो?
आज ही क्या, वो तो जब भी आती हैं तुम्हारे रंग ढंग भी देखती हैं।
और तुम्हारे?
अब अपना मुंह बंद भी करो, वैसे ही मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर आज तो इंस्पेक्शन भी है, जा रहा हूँ मैं।
आप बोर तो नहीं हो गए दीदी?
बोर तो नहीं, हाँ तुम दोनों की ये तकरार भरी बातें सुनकर उदास जरूर हो गई हो।
छोड़ो दीदी, इनकी तो अब ये आदत बन चुकी है झगड़ना।
मगर आदत सुधारी या छुड़वाई भी तो जा सकती है स्तुति, वरना अगर जिंदगी ऐसी ही चलती रही तो तिनका जमा करके बनाए आशियाने को बिखरते देर नहीं लगती।
मगर दीदी वो
मुझे बोलने तो दो स्तुति, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि राहुल गुस्सेला है, हमेशा गुस्सा करता है। जरा सोचो स्तुति, वह हेडमास्टर है, आज उसके यहाँ इंस्पेक्शन है और उसे इसी तरह के जिम्मेदारी भरे काम और घर के कई टेंशन रहते होंगे, ऐसे में उसका जल्दी गुस्से में आ जाना लाजमी है, समझ रही हो ना?
जी दीदी।
इसलिए अगर तुम अपने पति के साथ हमेशा के लिए अपनी ये तकरार बंद करना चाहती हो, तो राहुल गुस्से में हो तो तुम भी राहुल के गुस्से पर गुस्सा करने की बजाय चुप रहा करो।
मगर दीदी
देखो स्तुति, कांटे से कांटा तो निकल सकता है, मगर गुस्से को गुस्से से शांत नहीं किया जा सकता, दोनों में से एक को शांत रहकर गुस्से को शांत करना चाहिए। तो तुम ही शांत हो जाया करो, क्योंकि गुस्सा गुस्से से नहीं प्रेम से शांत होता है, और गुस्सा तो गुस्से को और भड़काता है। मैं राहुल को भी समझाने की कोशिश करूंगी, समझी तू?
जी दीदी।
देखो राहुल, मेरी बात का बुरा मत मान, मैंने स्तुति को भी समझाया है और अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
जी दीदी कहिए।
देखो राहुल, जिस तरह से तुम्हें घर बाहर का टेंशन रहता है, उसी तरह से स्तुति को भी घर की जिम्मेदारियों का टेंशन रहता है, वह घर का सारा काम करती है, तो ऐसी हालत में वह भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है।
मैं भी उसकी प्रॉब्लम समझता हूँ दीदी, मगर ये भी तो मेरी प्रॉब्लम समझे, और अगर ये मुझे नहीं समझती तो फिर मैं इसे क्यों समझूंगा? फिर जब ये मेरे गुस्से पर गुस्सा करती है तो मेरा सारा प्रेम दया सब भावनाएं गायब हो जाती हैं और रह जाता है केवल मेरा गुस्सा।
मगर राहुल, तुम तो स्तुति से कहीं अधिक समझदार हो ना? फिर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि गुस्सा सेहत और रिश्तों के लिए कभी अच्छा नहीं होता।
ठीक है दीदी, मैं आज से ही कोशिश करूंगा कि प्रेम ही मेरी सेहत और रिश्ते के लिए अच्छा साबित हो।
और स्तुति तुम?
मैं भी कोशिश करूंगी दीदी कि इनके गुस्से को प्रेम से जीतूं।
अरे पगली, मगर अभी अभी तो तू राहुल से गुस्सा ना करने की बात कह रही थी।
हाँ, मगर आटे में नमक बराबर हो तो फिर प्यार से मनाने में जिंदगी भी कुछ नमकीन हो जाती है।
जी दीदी।
तुम्हें पता है स्तुति, पति एक विशालकाय हाथी की तरह होता है जो प्यार से कहने पर सब कुछ सुन लेता है, मगर ज्यादा अंकुश चलाओ तो बेकाबू हो जाता है।
अरे दीदी, आपने ये गुरु मंत्र इसे क्यों दे दिया? अब मेरा गुस्से का क्या होगा?
अभी आपने सुना नाटक गुस्सा और प्यार। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं माइकल हॉजिस, मैरी प्रीति जोजो और मैरी एक्का।